ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा के इस बेहद घर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय पूर्णिमा बहन उपस्थित हैं। हम सब आपका एक हाथ की ताली से बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय पूर्णिमा बहन साकार बाबा के समय ही ज्ञान में भी आई और साकार बाबा ने अपनी ही नजरों से उन्हें सिलेक्ट करके माता पिता से अपनी गोद में लिया और तब से ही 1968 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। बहुत ही छोटी आयु में आप यज्ञ में आई, लेकिन बाप दादा के बहुत विशेष कार्यों के लिए आप निमित्त बनी। आप वर्तमान समय नडियाद सेवा केंद्र पर रहती हैं और नडियाद सब जोन के 35 से अधिक सेवा केंद्रों को बड़ा सुचारू रूप से, सरल और प्रभावी रूप से आयोजन कर रही हैं, निमित्त संचालन कर रही हैं। आप वैसे सोशल विंग से जुड़ी हुई है और गुजरात जोन की आप सोशल विंग की कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम आपसे आज अनुरोध करते हैं कि आपके पास अपने योगी जीवन के इतने ढेर सारे अनुभव हैं जो कि हमारी योग की गहन अनुभूतियों को बढ़ाने में हमारे लिए प्रेरणादायी रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसी कुछ आपके अनुभव की बातें हमें शेयर करें जिससे हमारे योग की क्वालिटी को हम और अधिक गहरा और अनुभूति संपन्न बना पाए। आदरणीय पूर्णिमा बहन।
ओम शांति। हम सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर विश्व पिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को चुना हुआ है और सारे विश्व की आत्माओं को, विश्व की आत्माएं जिसको भगवान के रूप में याद करती है, उन्होंने ही खुद ने आकर के जब अपना बनाया है तो हम दुनिया के अंदर सबसे भाग्यशाली आत्माएं है जो हम उनके बच्चे बने हैं। और वही भगवान हमारे माता पिता के रूप में हम सभी आत्माओं की पालना कर रहे हैं। बाप के रूप में वो अपनी जो प्रॉपर्टी है इस संगम युग की, वो है जो उनके पास ज्ञान का भंडार है, शक्तियों का स्तोत्र है और सदा के लिए गुणों से भरे हुए गुण के सागर है। ऐसा बाप इस संगम युग पर हम सभी आत्माओं को ज्ञान की, शक्तियों की और गुणों की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और हम सभी आत्माएं जितना भरना चाहे, जितना लेना चाहे उतना हम ले सकते हैं और उनका अनुभव जितना लेते हैं उतना हम सभी करते रहते हैं और उतना ही हम दूसरों को देते रहते हैं। दूसरा वो हमारी माँ है, जो हम सभी आत्माओं की वो पालना कर रही है। तो माँ बाप के रूप में उन पालना का हम अनुभव तब कर सकते हैं जब हम उसी स्वरूप के अंदर उसको याद करें। और दूसरा वो टीचर के रूप में हम सभी आत्माओं को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारे ही विषय हम सभी आत्माओं को रोज आकर के पढ़ाते हैं। ऐसा टीचर हमको सारी दुनिया के अंदर कहाँ भी नहीं मिलेगा जो स्वयं इस दुनिया से परे रहने वाला और दूर से दूर रहने वाला ऐसा परम शिक्षक रोज हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। और उसी पढ़ाई को जब हम पढ़ते हैं तभी हम ये याद रखें कि मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ और मैं कितना भाग्यशाली स्टूडेंट हूँ जो मुझे स्वयं भगवान ऊपर परमधाम से नीचे उतर करके पढ़ाने के लिए आते हैं। तो उसी पढ़ाई को जितना हम एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, आत्मा स्वरूप की स्मृति में रह करके सुनते हैं, उतना हमारे अंदर वो ज्ञान की जो पढ़ाई है वो उतरती जाती है। हमारे सामने ये मिसाल है कि जब साकार बाबा शिव बाबा उसके तन में आकर के पढ़ाते थे और बाजू के अंदर मम्मा जब बैठती थी तो वो इतना एकाग्र चित्त होकर के सुनती थी कि जिस समय शिव बाबा का महावाक्य ब्रह्मा के मुख से निकलता था उसी सेकंड उसकी धारणा बनती जाती थी। आज हम सभी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसी पढ़ाई को हम सभी सुनते भी हैं, लेकिन जो मम्मा ने, जो ब्रह्मा बाप ने जिस समय सुनाया उसी समय कोई भी संकल्प करे बिगर अपने जीवन के अंदर उनको धारण करते गए। हम तो कई बारी सोचते हैं कि बाबा ने तो कितनी सारी बातें बताई है, लेकिन जो हमारे से धारण हो सके उतना ही कर सकते हैं। धारण करने का पुरुषार्थ करते जाएंगे अंत समय हमारी वो धारणा बन जाएगी। लेकिन ब्रह्मा बाप ने और मम्मा ने यही सोचा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से कहा और उसी सेकंड और उसी घड़ी मुझे धारण करना है, क्योंकि हमारे जीवन में धारण हो सके इसीलिए तो भगवान हमको वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो वो आत्माएं धारणा मूर्त बन चुकी और हम सभी अभी उन पढ़ाई का सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जितना हम सुनते हैं उनकी गहराई में जाते रहे, क्योंकि सुनने के बाद फिर हम उनका सोचते नहीं है, उनका मंथन नहीं करते है, तो उससे हमको मोती या रत्न जो है वो हम अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे भी लौकिक में कहा जाता है कि आप जितना सागर की गहराई में जाएंगे उतना रत्नों की थाली भर भर के आएंगे। तो हमारे सामने ज्ञान सागर भगवान है और उसी ने जो कुछ दिया हुआ है उसी की गहराई में जाएंगे और उसी गहराई से हम अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ अनुभव के मोती प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि बाबा जब सुनाते हैं तो सुनते सुनते जब उसी स्वरूप में हम जाते हैं तो उसी स्वरूप का हम अनुभव कर सकते हैं, तभी हमारी ज्ञान की जो धारणा है वो बनती जाती है। ज्ञान का विषय इतना उच्च है और उससे ही हमारे जीवन की धारणा जब बनती जाएगी तो उस धारणा के कारण हम अपने जीवन के द्वारा सेवा कर सकेंगे। सेवा भी अनेक प्रकार की है, हम वाचा के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया वो औरों को देते जाए। इसीलिए हमेश बाबा कहते हैं कि धन दिए धन ना खूटे, तो जो हमको अविनाशी ज्ञान धन मिल रहा है वो हम और आत्माओं को बांटते जाए और उतना ही हमारा जो ज्ञान धन है वो बढ़ता जाएगा। और उनके साथ साथ हम अपने जीवन की धारणा से हम अपनी मनसा के द्वारा भी और आत्माओं को शुभ संकल्प का वाइब्रेशन दे सकते हैं। गीत भी हम योग के अंदर सुन रहे थे, कितनी अच्छी बातें बताई कि जो हम सोचते हैं और वो सोच जो है वो हम औरों को भी शुभ संकल्प के रूप में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए भी शुभ संकल्प करें और औरों के लिए भी शुभ संकल्प करें तो ये जो हमारा संकल्प है वो शुभ कब होता है? जब हम अपने बाबा के ज्ञान की गहराई की बातें सोचते रहेंगे और उनके द्वारा ही हमारे जीवन की धारणा से सेवा होगी। हम लोग देखते हैं कि जब गांधी जी का एक ही महावाक्य है कि जीवन वो मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही औरों के लिए संदेश है, तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप अपना ऐसा जीवन बनाओ वो संदेश के रूप में हमारा जीवन बन जाए। और वही बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। हमने अपने जीवन के अंदर साकार बाबा के द्वारा माँ बाप के स्वरूप का भी अनुभव किया और टीचर के स्वरूप का भी अनुभव किया कि जब बाबा के सामने बैठ कर के पढ़ते थे उस समय तो बहुत छोटी उम्र थी और उसके कारण हम बाबा के सामने जब बैठते थे तो कई बारी सुनते सुनते नींद भी आ जाती थी। नोट लेके बैठते थे बाबा के सामने और हम छोटे होने के कारण बाबा कभी पीछे नहीं बैठने देते थे। वो कहते थे नहीं बच्चे आप हमारे सामने आकर के बैठो, तो कितने भी पीछे बैठे होंगे तो बाबा खड़े करके हम लोगों को आगे बुलाते थे। जब हम आगे बैठते थे और बाबा जब पढ़ाता था तो नोट पेन लेके बैठते थे, लेकिन फिर भी आँख घेरती थी, थोड़ा नींद की असर आ जाती थी, तो ऐसे लगता कि जैसे हम लिखते हैं तो मन में होता था कि बाबा हमको देख न जाए, और जैसे कि बाबा को लगे कि मैं अच्छी रीति से पढ़ती हूँ, अच्छी रीति से मैं लिखती हूँ, तो बाबा का ध्यान जो है वो सभी बच्चों के प्रति बहुत जाता था कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। जब बाबा पढ़ाई पढ़ लेता था और नोट देखते थे तो उसके अंदर क्या लिखा है कि वो समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि सारा लिटा लिटा या कोई बड़े बड़े अक्षर या कैसे भी अक्षर आ जाते थे। तो उसी समय बाबा की जब नजर जाती थी तो बाबा हम बच्चों के सामने एक्शन करके बताता था, चाहे सुनते सुनते बगासा आ जाता था, सुनते सुनते जुटका आ जाता था, तो बाबा कहता था देखो देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी कौन पढ़ाने के लिए आए हैं, कौन टीचर सामने बैठा है, वो बच्चे की बुद्धि से निकल जाता है। तो देखो बच्चे कैसे जुटका खा रहे हैं, कैसे उबासी खा रहे हैं, तो बाबा ऐसे सजाग करता था, जिसके कारण बाबा सभी के बीच में कहते थे तो ध्यान भी जाता था, शर्म भी आती थी और फिर अलर्ट भी हो जाते थे। ऐसे बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते थे और साथ साथ बाबा हम सभी बच्चों को सतगुरु के रूप में महान मंत्र देते, जो बाबा एक ही अक्सर कहता कि बच्चे आप अपने देह को भी याद नहीं करो और साथ साथ आप एक ही बाप को याद करो, न देह को याद करो न देह के संबंध को याद करो। तो देखो सुनना बाबा जो कहता है कि वो कितनी सहज बात है कि बच्चे देह को याद नहीं करो और सिर्फ आप मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। सुनने में बहुत सहज लगता है के, लेकिन जब बाबा वो कहता है के, तभी हम अपने मन से ये सोचे कि हम अपने देह को कितना भूले हुए है, और वो पुरुषार्थ देह को भूलने के लिए और देह के संबंधों को भूलने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे सामने बाबा की जीवन कहानी है, आप सभी भी बाबा की जीवन कहानी को पढ़ते होंगे या तो क्लास में भी सुनते होंगे या मधुबन में कई बारी आए है तो सुनी हुई होगी कि ब्रह्मा बाप ने अपने देह को भूलने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। मैंने तो देखा है कि बाबा को कि बाबा का जो व्यक्तित्व था वो बहुत सुंदर था, जैसे बाबा के सामने आके खड़े रहते थे तो ऐसे होता था कि हम अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल जाते थे। बाबा का इतना आकर्षण था जो जैसे कि हम बाबा को देखते रहे और देखते देखते हम कहाँ खड़े थे और हमारा शरीर क्या है वो भी हम भूल जाते थे। मैं कई बारी ये सोचती थी कि बाबा का इतना अच्छा व्यक्तित्व है, बाबा के शरीर जो है वो बहुत सुंदर और आकर्षित था, और फिर भी जब भगवान ने रथ लिया और उनको कहा कि बच्चे आप अपने देह को भूल जाओ, तो उन्होंने अपने देह को भूलने के लिए रात दिन अपने मन के अंदर वो एक अक्षर घूंटते रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सारा दिन उनकी बुद्धि के अंदर वो रट लगी हुई थी, जैसे कि कोई धुन लगाते हैं और उसी धुन को अपने मन के अंदर वो धुन लगाते ही रहते हैं। बाबा ने अपने शरीर को भूलने के लिए आत्मा की धुन लगाई, चाहे के मन के अंदर, चाहे के नोट में बैठ के लिखते रहे, चाहे के अपने पास जो कुछ आता रहा वो लिखते रहे, और बाबा ने वो पाठ पक्का करा लिया। अपने जीवन के अंदर बाबा ने जब से लेकर श्री बाबा ने प्रवेश किया और 1969 तक 1968 तक बाबा ने ऐसा पाठ पक्का किया जो बाबा पूरे ही देही अभिमानी बन चुके और वो आत्मा पंछी अपनी संपूर्ण अवस्था को बना के बाबा अपने प्यारे वतन में पहुंचे। अभी वतन में बैठ कर के भी बाबा हम बच्चों को यही इशारा देता रहता है कि बच्चे आप अपने देह को भूल जाओ। दूसरी बात, बाबा का संबंध जो है वो अपने परिवार के साथ बहुत प्यार का था। हम लोग भी परिवार में रहते लेकिन हम अपने परिवार के बीच में कितना सभी के साथ प्यार से रहते के वो तो जो रहते उन खुद को ही अनुभव होगा कि बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम अपने परिवार के अंदर क्या क्या हमारा जीवन व्यतीत होता है के वो हम अपने जीवन को ही पूछे, लेकिन बाबा का जीवन अज्ञान काल में भी और ज्ञान में आने के बाद भी ऐसा दैवी परिवार सत्यु का संस्कार था जो सरेक आत्माओं के प्रति अति प्यार और स्नेह था। कभी बाबा के घर के अंदर न ऊंचे आवाज से बोले होंगे, न कोई झगड़ा हुआ होगा। इतना अच्छा परिवार होते भी श्री बाबा ने कहा कि देह के संबंधों को भूलना है, तो बाबा ने वो भी पुरुषार्थ किया कि मेरे परिवार में जो कोई आत्मा है, चाहे बच्चा है, चाहे बहू है, चाहे पोती है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो सभी आत्मा एक है। और उसी आत्मा के स्वरूप में बाबा ने वो पाठ पक्का किया और अपने अलौकिक परिवार की तरह अपने लौकिक परिवार को भी देखने लगे। और इसी के कारण सर्व संबंधों का अनुभव वो शिव बाबा से कर पाए। हम भी बाबा के बच्चे है, हमारा संबंध भी बाबा के साथ है, लेकिन हम जो अनुभव करना चाहिए वो तब कर सकते है जब हम भी उस देह के संबंधों को भूलते जाएंगे और सर्व संबंध जो है वो बाप के साथ जोड़ करके अनुभव करेंगे। वो रसना भी हम तब प्राप्त कर सकते हैं कि उसी संबंध से हम बाबा को विशेष याद करें। और उनके साथ साथ वही बाप जो है वो हम बच्चों का सतगुरु के रूप में दो मंत्र देता है कि मनमना भव और मध्याजी भव। उसी पाठ को पक्के हम करते रहे, आखिर बाबा घड़ी घड़ी एक ही बात करता है कि बच्चे आप मुझे याद करते रहेंगे तो तुम्हारा विकर्म भस्म होता जाएगा। हम सोचे कि 63 जन्म के किए हुए विकर्म को भस्म करने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के अंत में जब रिजल्ट निकलेगा और हमने अपने जीवन के अंदर बाबा ने कहा कहे अनुसार जो हमने अपने 63 जन्म के विकर्म को भस्म नहीं किया, तो बाबा अपना चौथा स्वरूप याद दिलाता है कि मैं आपका माता पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। लेकिन याद रखना कि मैंने जो आपको बताया उस अनुसार अपने अपने जीवन को धारण नहीं किया, विकर्म को भस्म नहीं किया, तो धर्मराज के स्वरूप में मैं सिर्फ आपको साक्षात्कार कराऊंगा और उस साक्षात्कार से मालूम पड़ेगा कि हमने अपने जीवन के अंदर अपने किए हुए कर्म को कितना विकर्म को भस्म किया है और नहीं किया है। तो जैसे कि मैं ये भी अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब जब मधुबन में आना होता था तो बाबा के सर्व स्वरूपों का हमने अनुभव किया है, ये धर्मराज के स्वरूप का भी हमने अपनी इन आँखों के सामने अनुभव किया हुआ है। कैसे अनुभव किया कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब हम मधुबन में आते हैं तो पहले फॉर्म भराया जाता है कि भाई आप कितना अपने जीवन के अंदर ये ज्ञान लेने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने जीवन के अंदर कितनी धारणा की है वो उसी फॉर्म में लिखना होता है और हम सभी लिख के देते हैं। आप जो लिख के देंगे वही हम स्वीकार करेंगे, वही मधुबन में भेजा जाएगा, मधुबन भी वही स्वीकार करेगा। लेकिन हमने कितनी सच्चाई और सफाई से लिखा हुआ है के वो तो हम खुद ही जाने। तो वैसे एक भाई ने वो फॉर्म भर के भेजा और जब साकार बाबा थे तभी पार्टी लेके ब्राह्मणी आई और पार्टी के अंदर वो व्यक्ति जब आई तो क्लास के अंदर जब बैठी तो उस समय बाबा की जो मुरली है वो ऐसी ही चली कि आज इसी सभा के अंदर, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ की सभा है और इस सभा के अंदर कोई ऐसी भी आत्मा बैठी है जो अपने जीवन को ऐसे पवित्र नहीं बना रही है। तो जैसे समझने वाले तो समझ जाते हैं कि भाई मैंने सच लिख के आया हूँ या झूठ लिख के आया हूँ, लेकिन फिर भी वो बुद्धि में नहीं आया। दूसरे दिन जब बाबा मिले तो बाबा ग्रुप को मिलते थे तो पूछा कि बच्चे आप लोगों को कुछ अपने जीवन की बातें कहनी है, तो भी वो समझ में नहीं आया। फिर तीसरे दिन जब क्लास में बैठे और क्लास पूरा होने के बाद अपनी रूम के अंदर जाके सोने लगे, जब सोना शुरू किया उस समय उनको अपने सारा शरीर खींचने लगा और इतना वो चिल्लाने लगा, बूम लगाने लगा कि बाबा अब मैं नहीं करूंगा, बाबा अभी मुझे सहन नहीं होता है। कि जैसे उसको कोई मार रहा हो, कुछ लग रहा हो, कोई शरीर में दर्द हो रहा हो। उस समय छोटे छोटे बच्चे उस रूम में गए और वो सीन देख के घबरा गए और जैसे घबरा गए तो उनको लगा चलो मैं बाबा को जाके बताऊं। वो दौड़ के बाहर आए तो उस समय अपना विश्व किशोर भाव, बाबा का लौकिक भतीजा, वो वहाँ प्रांगण में घूम रहा था। तो बच्चे जाके उनके हाथ पकड़ के कहने लगे कि भाव आप हमारे साथ रूम में चलो, एक भाई बहुत चिल्ला रहा है। तो जब भाव गए तो सचमुच वो अपना पांव पछाड़ रहे थे, अपना सिर पछाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो पूछा कि क्या हो रहा है के? तो बोला बाबा को बुला के लाओ। तो भाव ने सोचा कि चलो मैं बाबा के पास जाऊं। बाबा अपने रूम के अंदर बहनों के साथ ताश खेल रहे थे। बोला बाबा आपको बुला रहे हैं, एक भाई बहुत चिल्ला रहा है के। तो उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे चिंता मत करो, वो अपनी सजा खा रहा है के। बोला क्यों बाबा? तो बोला कि आप सोचो ही नहीं, वो जो इस यहाँ मधुबन में आए है लेकिन वो आत्मा पवित्र नहीं है और झूठ बोल के आए है, तो इसीलिए आप चिंता मत करो। उनको बाबा को कहा कि अच्छा वो जिसके साथ आया है कि उस बहन को भेजो। बाबा ने उनको भी मना कर दिया कि तुमको भी नहीं जाना है। तो भाव ने क्या किया कि एक पानी का ग्लास लेके उनकी रूम में गया और रूम में जाकर के उनकी आंखों पर पानी छाटा और कहा लो बाबा ने पानी भेजा है और आप पीवो। तब वो शांत हुआ और शांत होने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि मैं यहाँ झूठ बोल के आया हूँ। फिर शाम को हम सभी बाबा की रूम में मिलने जाते थे, हमारे साथ वो भी भाई आए और बाबा ने फिर कहा कि अच्छा बच्चे कुछ कहना है किसी को, क्योंकि ऐसे तो बाबा हम सभी के बीच में तो कोई नहीं कहेगा। तो जब बाबा ने मिल लिया और हम उठ गए तो फिर बाबा ने उन अकेले को बुलाया, कहा बच्चे आपने कल क्या अनुभव किया? तो उन्होंने सुनाया कि बाबा मुझे माफ करो, मैं आत्मा पवित्र नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अभी यहाँ बैठ के लिखो तू धर्मराज, और मुझे पत्र लिख के दो क्या क्या आपने पाप कर्म किए हैं। तो देखो ये भी जब हम बाबा का स्वरूप वो देखा कि जब वो बाप होता है तो इतना ही प्यार करता है के टीचर बन करके इतना प्यार से पढ़ाता है के और सद्गुरु बन के हमको रोज वरदान देता है के और उस वरदानों से सजाता है के, लेकिन जब धर्मराज बनता है के तब वो हमारे कर्म को हमारे सामने साक्षात्कार कराता है के। लेकिन हम सभी ये याद रखे कि जब ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर हमको अपने प्यारे बाप दादा ऐसे अच्छे स्वरूप के अंदर माता पिता के रूप में श्रृंगार रहे थे, और वो श्रृंगार हम आत्माएं अपना रोज करते रहे और साथ साथ हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रख कर के पढ़ते रहे और बाबा ने जो मंत्र दिया है उनको पक्का करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप माता पिता को फॉलो करो और फॉलो करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम आत्माएं भी बाप के समान संपूर्णता के तरफ हम जाएंगे, क्योंकि बाबा संपूर्ण सिर्फ 33 बरस के अंदर उन्होंने अपनी अवस्था को संपूर्ण बनाया। देखो बाबा ने 33 वर्ष तक साकार मुरलिया हम बच्चों के आगे रखी और पूरे ज्ञान से धारणा से और चारों ही विषय से हम सभी को सजाते रहा। उनके बाद जब 1969 के अंदर बाबा संपूर्ण बन चुके, उनके बाद भी 2013 तक बाबा की मुरली को हम सभी सुनते रहे और बाबा को जो कुछ शिक्षाएं देनी थी वो बाबा देते रहे और हम सभी बच्चे उस शिक्षा को लेते रहे। अभी हम देखते हैं बाबा का जो पार्ट है ये 2014 के अंदर बाबा हम बच्चों को सिर्फ क्या बातें कहते, दो बातें पक्की कराते कि बच्चे आप मेरे दिल में हो और मैं आपके दिल में हूँ। अभी बाबा का प्यार का रूप है, प्यार देता रहता है और हम सभी को प्यार से पुचकारता रहता है। और जब बाबा को कहते हैं कि बाबा और भी कुछ कहो कि हमको क्या करना है के, तो बाबा क्या कहता है के, मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया है के। अभी जो समय रहा हुआ है के कि बाबा ने जो कुछ बातें कही है चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में, तो हम सभी आत्माओं को वो दोनों ही बातों को ध्यान में रख कर के अभी हमको ये रिवाइज कोर्स का टाइम है वो भी अभी पूरा होने आया है, क्योंकि साकार मुरली कितनी बारी रिवाइज हुई है और अव्यक्त मुरली भी कई बारी रिवाइज होती रहती है। अभी है सिर्फ हमको अपने अंतिम समय का पुरुषार्थ करना है, वो यही है कि एक बाप के सिवाय हम किसी को याद न करें। बाबा ने हम बच्चों को ये भी प्रैक्टिस कराई। मुझे याद है कि बाबा के पास जब हम पांडव भवन के अंदर आते थे और हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा बैठते थे, तो कई बारी बाबा कहते थे कि बच्चे आप कल बाबा 4 बजे हॉल में आ जाएगा और आप सभी को बाबा योग कराएगा, आप बच्चे सभी पहुंच जाना। उस समय तो बहुत कम थे, करीबन हम 50 होते थे, 80 या 100 होते थे, तो बाबा को लगता था कि कितने सारे बच्चे आए थे, जैसे कि बहुत बच्चे हैं। उस समय हम लोग जब बाबा के पास सुबह में 4 बजे हॉल के अंदर जाते थे और बाबा आकर के संगली पर बैठते थे तो इतना शांति का सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि बाबा खुद उस योग की गहराई के अंदर और उसी देही अभिमानी की स्थिति में और शिव बाबा की लगन में बैठता था कि उसके मस्तक पर इतनी तेज होती थी और आंखों द्वारा इतनी करंट आती थी कि जैसे हम भी अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध को भूल जाते थे। और थोड़ा समय बाबा दृष्टि देते और दृष्टि देते देते फिर बाबा खड़ा भी हो जाता था और खड़ा होने के बाद बाबा कहता था कि बच्चे अभी मैं चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आना। जैसे बाबा गेट के बाहर निकल के प्रांगण में आते थे और उसी प्रांगण में बाबा घूमते थे और आत्मा की स्मृति और बाबा की याद दिलाते चलते थे कि चलते चलते भी हम कैसे शिव बाबा को याद करें। और चलते चलते बाबा जैसे हमारा अभी पांडव भवन के अंदर मेडिटेशन हॉल के उनके बाजू में बहुत छोटे छोटे पगथिए, वो बाबा चढ़ के ऊपर चढ़ता था और हम सभी को कहते थे आप सभी को नीचे खड़े रहना है। तो जैसे बाबा हम सभी को सामने खड़े रखते थे और बाबा एकदम ऊपर जाके खड़े रहते थे और खड़े होने के बाद जैसे कोई पावर हाउस आत्माओं को पावर देते के वैसे बाबा दृष्टि देके हर एक बच्चों के अंदर वो पावर भरते थे। ऐसे लगता था कि जैसे हम कहाँ खड़े के वो भी भूल जाते थे। जैसे बाबा हम बच्चों को ये योग की प्रैक्टिस कराते थे कि चलते फिरते कैसे शिव बाबा को याद करके उनसे हम अपने अंदर शक्ति को प्राप्त करें और उनके साथ साथ उसी गहराई में जाए जिससे हम अनुभव करें, तो हम भी अनुभवी बनेंगे तो हमको हमारे जीवन के द्वारा औरों को हम अनुभव करा सकेंगे। लेकिन हम अनुभव तब कर सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भरा हुआ है और जो कुछ भार है वो हम भगवान को सौंप दे। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक भाई जो है वो अपने खभे पर बहुत वजन लेकर के चल रहा था और वजन लेके चलते चलते वो थक जाता है और जब बहुत थक जाता है तो वो सोचता है कि जीवन के अंदर बस चलते रहना है और वजन लेके घूमते रहना है, अभी तो मैं अपने जीवन से थक गया हूँ और इसीलिए अभी मुझे जीना नहीं है, अभी तो मुझे मर जाना है। आप लोगों को मालूम है मरने के लिए भी सोच करना पड़ता है कि कैसे मर जाए। तो वो चलते चलते सोचता था कि मुझे जीना नहीं है मरना है, अभी मैं कैसे मरूं। तो जैसे वो चलता चलता सोचता था तो उनके सामने एक प्रकाश दिखाई पड़ा और जब प्रकाश दिखाई पड़ा तो वो खड़ा रहता है और उस प्रकाश को देखता रहता है। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये प्रकाश क्या है, तो वो जिसको याद करता था भगवान को वो स्वरूप उसको दिखाई पड़ा। अरे और वो स्वरूप उसको कह रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो जैसे वो प्रकाश कोई ऐसे वो जिसको याद करता था उसी स्वरूप में वो स्वरूप आ जाता है के, तो कहता है बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला क्यों मरने के लिए जा रहा है के? तो बोला आप देखो तो से मेरे खभे पर कितना वजन लेके मैं घूम रहा हूँ और अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मेरे से ये वजन नहीं लिया जाता है के, इसलिए बस मुझे तो अभी मरना ही है, मरने का ही सोचे। बोला अच्छा तो चलो मैं तुमको एक जगह ले जाता हूँ, मरने का बाद में सोचना, लेकिन मैं जहाँ ले जाता हूँ वो आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो जैसे कहता है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तो वो उनके पीछे जाता है के, तो उसको वो भगवान जो है, भगवान का जो स्वरूप है के, वो उसको कहता है के, कि यहाँ एक बहुत बड़ा गोडाउन है और गोडाउन के अंदर अलग अलग, मैंने आप देख लो, बहुत जो जिसको कहते हैं ना कि सब चीजें पोटला बना करके रखते हैं, और वो बहुत गोडाउन के अंदर अलग अलग पोटला रखा हुआ था जिसके अंदर सब चीजें बांध करके रखी हुई थी और पूरा गोडाउन भरा हुआ था। तो उनको कहा कि आप देखो ये सारा गोडाउन के अंदर रखा हुआ है, अभी तुमने जो खभे पर वजन लिया है ना, वो वजन आपको बहुत लगता हो, तो वो वजन कम करने के लिए अभी ये सब चीजें है उसमें जो वजन कम हो वो तुम ले लो और तुम्हारा वजनदार तुम वहां रख देना। तो वो देखने गया और एक एक उचकने लगा, तो उनके पास जो वजन था उनसे भी ज्यादा वजन था और वो उचक ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे से तो यहाँ सब वजन ज्यादा है के, तो फिर कहा कि मेरे से नहीं ये लिया जाता है के, उनसे तो मेरा वजन कम है। तो बोला अच्छा जो इसमें वजन है आप खोल के देखो कि क्या है। तो उसी सभी के ऊपर नाम लिखे हुए थे, तो उन्होंने देखा नाम पढ़ते पढ़ते जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने पढ़ा वो व्यक्ति को वो पहचानता था, बहुत पैसादार व्यक्ति थी, करोड़ों रुपए के आसानी थे, घर में दो तीन बंगले थे, कारें थी और बहुत धनाढ्य था। तो उन्होंने उनको लगा कि ये पैसादार व्यक्ति है तो मैं देखूं उसका छोड़ के, तो उन्होंने वो पोटला छोड़ा और छोड़ने के बाद चीजों के ऊपर चिट्ठी लिखी हुई थी और वो चिट्ठी लेके पढ़ने लगा और उसमें लिखा हुआ था कि ये जो वजन है वो किस बातों का मेरे पर वजन है। तो एक चिट्ठी में लिखा हुआ था जो वो बहन थी, बहन का नाम था, वो बहन ने चिट्ठी अंदर लिख के रखी थी कि मेरा जो पति है, बहुत पैसे वाले हम लोग है लेकिन मेरा पति है बहुत जुगारी है, वो रात को क्लबों में जाता है के जुगाड़ खेलता है के, बहुत देरी से आता है के और घर में आके फिर मारपीट करता है के, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। फिर उन्होंने दूसरी चिट्ठी उठाई, उसमें लिखा हुआ था मेरे दो बच्चे है और वो दो बच्चे भी बहुत पैसे होने के कारण सारा दिन वो घूमते रहते, रखड़ते रहते और दारू पीते थे और आकर के रात को दोनों झगड़ते थे और बहुत धमाल करते, इसके कारण मैं दुखी हूँ। तीसरी चिट्ठी में लिखा था मेरी एक ही बच्ची है, बच्ची बहुत रूप में है, हमारे पास पैसे भी है, बच्ची अच्छी भी बहुत है लेकिन वो कैंसर से ग्रस्त है, कैंसर के रोग में पड़ी हुई है और उसके कारण मैं दुखी हूँ और ये बातों का भार मेरे जीवन में बहुत है, ऐसे सब लिखा हुआ था। तो उसी व्यक्ति ने देखा कि मैं अपने अंदर सोचता रहता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी वो स्त्री बहुत अच्छा जीवन अपने घर में रह के व्यतीत कर रही है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान आप ये बतावो कि ये व्यक्ति अपने घर में अपने जीवन को तो व्यतीत कर रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो हर एक व्यक्ति अपने घर में रही हुई है लेकिन जितना आप छोड़ेंगे ना उतना ये दुख का पोटला आपको दिखाई पड़ेगा। तो बोला कि मैं जो हूँ इतना दुखी क्यों हूँ, मेरा कम वजन होते मैं मरने का सोचता हूँ। तो उन्होंने कहा उस भगवान ने कि देखो बच्चे, ये सभी के पास ये दुख है, लेकिन ये गोडाउन में रख के गए थे और इसीलिए वो जीवन अपना घर में व्यतीत कर रहे थे और तुम अपने साथ में ले लेके घूमते हो और इसीलिए तुम दुखी हो। ये तुम्हारा बोझ जो है, तुम भी इसी गोडाउन में रख के जाओ तो तुम हल्के हो जाएंगे। अभी आप सोचो, बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है? बाबा वही बात कहता है ना कि आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ किया हुआ कर्म है या जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में बोझ है, वो आप मेरे पास रख के जाओ, मुझे सब कुछ दे दो, आप अपने पास रखो नहीं तो आप हल्के बन जाएंगे। हल्के बनने का रास्ता एक ही है, हम अपना जो कुछ है वो बाबा के आगे रख दे, अर्पण कर दे, तो हम एकदम हल्के होंगे और हल्के होके बाबा की याद जो है वो सहज कर सकेंगे। आज हम बाबा की याद जो है वो अनुभव क्यों नहीं कर सकते के? इसीलिए हम बोझ लेके फरते के घूमते रहते के, और हम बाबा को जो बोझ दे देंगे तो फिर क्या होगा, एकदम हम हल्के बन करके बाबा की याद बहुत सहज स्वरूप के अंदर कर सकेंगे। इसीलिए हम ये पुरुषार्थ करें और ये पुरुषार्थ करने के कारण हम हल्के बनते जाएंगे और बाबा को सहज रूप से बहुत सहज रूप से याद करेंगे। अभी दादी जी हमारे सामने आई है तो हम सभी फिर से एक हाथ की ताली से दादी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति।